नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। देश भर के कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित। भारतीय चिकित्सा संघ ने कल देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू क्षेत्र के 8 जिलों में 19 आतंकवाद रोधी इकाइयां स्थापित की और थाईलैंड की संसद ने पेतोंग तान छिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 की तीसरी उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस सफलता से ये साबित हो गया है कि भारत अत्यंत छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। इन दोनों उपग्रहों को 475 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया है और इनके सौर पैनल खोल दिए गए हैं। SSLV-D3 175 किलोग्राम भार के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 और एक अन्य छोटे उपग्रह SR-0 के साथ रवाना हुआ। ये यान 34 मीटर लंबा और लगभग 119 टन वजन का है। एक रिपोर्ट।
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 ने आज सुबह ठीक 9:17 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। इसरो केंद्र और दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी लोगों की ताइयों के बीच रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ गया। मिशन का उद्देश्य एवियोनिक सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण करना और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के भविष्य के उपक्रमों के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना है। ये उपग्रह निगरानी, आपदा निगरानी, आग का पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधियों, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदाओं जैसे अनुप्रयोगों के लिए दिन और रात के दौरान इंफ्रारेड तस्वीरें भेजेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
मिशन निदेशक SS विनोद ने कहा है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
Today we have achieved a major milestone in the journey of SSLV. The last and final development flight of SSLV-D3 has been successfully accomplished. With that, we are moving into the operational phase.
उपग्रह निदेशक M. अविनाश ने कहा है कि इस मिशन से लचीले सौर पैनलों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का परीक्षण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण ने गगनयान परियोजना में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एवियोनिक्स और रिमोट सेंसिंग के लिए एक नया डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा है कि इस साल के अंत तक पहले मानव रहित मिशन गगनयान के प्रक्षेपण के प्रयास जारी हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गगनयान के सभी हिस्से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंच गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। श्री सोमनाथ ने कहा कि मानव मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए गामा किरणों की सीमा, यूवी विकिरण की तीव्रता और ब्रह्मांडीय अल्ट्रा विकिरण की जांच करने वाले सेंसर को मापा जाएगा।
So the rocket has fully reached sharp after integration at all the facilities. The crew module, crew escape system integration is currently going on. The crew module is at VSSC, crew service module integration is going on at Saichuan Space Center, crew URSC is already, hardwares are ready.
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे News on AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
हाँ जी, सुनती हो? आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संघों की जारी हड़ताल के कारण देश भर के कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पंजाब के अमृतसर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सभी गैर आवश्यक सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है। गुरु नानक देव अस्पताल में भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ बॉन्डेड रेजिडेंट डॉक्टर्स और राज्य में मेडिकल इंटर्न्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। केरल में भी रेजिडेंट डॉक्टर और परास्नातक मेडिकल छात्र आज राज्य के अस्पतालों में हड़ताल पर हैं। केरल मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के अनुसार पीजी डॉक्टर आज ओपीडी के साथ साथ वार्डों में ड्यूटी सहित सभी गैर आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। एसोसिएशन ने बताया है कि हड़ताल से अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर गोवा में भी इस घटना के विरोध में 1000 से अधिक डॉक्टर कल 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाओं के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कुछ अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ डॉक्टरों ने जीटीबी अस्पताल से स्वामी दयानंद अस्पताल तक मार्च निकाला। इस बीच भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए देशभर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। चिकित्सा संघ ने कहा है कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों को सजा दी जाएगी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट और रेप्रोलॉजिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग की है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करने सहित राज्यभर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आज कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी पूछताछ कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा करना आम बात हो गई है तथा कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन आयोग आज आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। इस संबंध में आयोग आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हाल ही में आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को इस साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। वहीं हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। इन दोनों राज्यों के अलावा महाराष्ट्र तथा झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने जम्मू क्षेत्र के 8 जिलों में 19 आतंकरोधी इकाइयां बनाई हैं। ये कदम जम्मू क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर लिया गया है। इन इकाइयों के पास आधुनिक संसाधन तथा प्रशिक्षण होगा, जिससे इन इलाकों में आतंकी गतिविधियों में कमी आएगी। हर इकाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आईपी लॉ और मैनेजमेंट में संयुक्त मास्टर्स LLM के पहले बैच के इंडक्शन प्रोग्राम में भाग लिया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण बौद्धिक ज्ञान भंडार की सोने की खान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वेद इस बौद्धिक संपदा के प्रमुख उदाहरण हैं।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट आर पिवोटल टू इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिव एंडेवर्स एज वेल एज सेफगार्डिंग आवर एंशिएंट नॉलेज एंड रिसर्च, द लेटर वन इज मोर इम्पोर्टेंट। इन आवर ग्लोबलाइज्ड एरा आईपी हैज बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडिया दैट इज होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। स्ट्रॉन्ग आईपी प्रोटेक्शन इज क्रूशियल फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फोस्टरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पैरिस ओलंपिक 2024 की कांस्य पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को सम्मानित किया। उन्होंने मनु भाकर को 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। पत्रकारों से बातचीत में श्री सोनोवाल ने कहा कि मनु भाकर में क्षमता, समर्पण और प्रतिबद्धता है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नई दिल्ली में सदैव अटल स्थित उनकी समाधि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पर जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना।
चाहे वो काव्य मंच हो या संसद का गोलघर, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने वक्तव्य से जन संबोधन में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वाजपेयी की देह सन 2018 में 93 वर्ष की आयु में बीत गई। जब सन 1999 में तमाम विपक्ष ने अपने अस्तित्व का जोर लगा दिया, तब वाजपेयी सरकार को मात्र एक वोट से हार का सामना करना पड़ा। मगर कहते हैं ना, मैं इस कदर हार जाऊंगा कि तुम जीत कर पछताओगे।
हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे।
प्रगतिशील विचार वाले अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। देश के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से लबरेज वाजपेयी कहते हैं,
उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए याद किया जाता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में आईना ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को मिला है। ऋषभ शेट्टी ने कन्नड़ फिल्म कंतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। हरियाणवी फिल्म फौजा को गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए पुरस्कार मिला है। अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन अगले महीने की 15 तारीख तक दिए जा सकते हैं। इच्छुक लोग राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। थाईलैंड की संसद ने आज पूर्व प्रधानमंत्री थॉकसिन छिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी पेतोंग तारन छिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। 37 वर्षीय थॉकसिन सत्तारूढ़ फूआई पार्टी के नेता हैं और थाईलैंड की अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री सेरेथा थाविसिन को हटाए जाने के बाद पेतोंग तारन का नामांकन हुआ था। संवैधानिक न्यायालय ने रिश्वतखोरी के मामले में थाविसिन को दोषी पाया था और वे एक साल से भी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाला दोपहर 12:05 का हिंदी बुलेटिन अब 18 अगस्त से दोपहर 12 बजे प्रसारित होगा। इसके बाद अंग्रेजी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। देशभर के कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित। भारतीय चिकित्सा संघ ने कल देशभर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू क्षेत्र के 8 जिलों में 19 आतंकवाद रोधी इकाइयां स्थापित की और थाईलैंड की संसद ने पेतोंग तारन छिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।